श्रोताओ नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। हम आशा करते हैं कि आप सब भी हमारे साथ आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से आमोस नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है पाप का न्यायोचित दंड। श्रोताओ हमें पूरा विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, किंतु इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्याला मेरा लबरेज कर, तिश्ना लबी को दूर कर, रूह को मेरी तू सैर कर, रूह को मेरी तू सैर कर, यीशु यीशु मसीह के नाम से मांगू दुआ मेरे खुदा, यीशु मसीह के नाम से सुनो इसे कबूल कर, सुनो यीशु मसीह के नाम से दूर कर, रूह से मुझे भरपूर मसीह के नाम से मांगू दुआ मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से सुनो फल रुके मुझ में पैदा करने की खुशी हिल्म पैदा कर परहेजगारी पैदा कर परहेजगारी पैदा कर यीशु यीशु मसीह के नाम से मांगू दुआ मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से सुनो यीशु मसीह के नाम से मांगू दुआ मांगू दुआ मांगू दुआ मांगू दुआ मांगू दुआ
प्रिय मित्र प्रभु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने मित्रों के साथ तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से आमोस नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हम सब ने देखा कि इसराइलियों को परमेश्वर ने फिर से एक बार मन फिराव के लिए मौका दिया ताकि वे अपने मनों को फिराकर परमेश्वर की ओर आ सकें। मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे अत्यंत प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से एक बार दिया है ताकि हम आपके जीवित और सामर्थी वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को जो इस समय आपके वचन को सुनने के लिए तैयार बैठे हैं अपनी बुद्धि ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि आपका वचन उनके कानों से होकर हृदयों तक पहुंचने पाए, उनसे बोलने और बातचीत करने पाए, उनके जीवन में एक नयापन लाने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, इस घड़ी हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो अपने जीवन में निराश हैं, परेशान हैं, चिंता और तनाव में हैं, अपने जीवन को समाप्त करना चाहते हैं, पारिवारिक समस्याओं में हैं, अपने जीवन साथी की तलाश में हैं, विनती है कि आप उन सब पर भी कृपा दृष्टि करें, उन्हें भी अपने शांति और आनंद प्रदान करें, आज के वचन के द्वारा उनसे बोले और बातचीत करें, ताकि प्रभु प्रत्येक जीवन आप में धन्य होने पाए। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम देख रहे हैं कि आमोस उनकी आत्मिक दशा का वर्णन करने के बाद फिर कहता है कि परमेश्वर चाहता है कि वे उसे खोजकर जीवन पाएं, मूर्ति पूजा का त्याग करें, क्योंकि वे तो सब के सब ध्वंस हो जाएंगी, ध्वंस की जाएंगी और सब कुछ नाश हो जाएगा, उनका बुझाने वाला कोई ना होगा। परमेश्वर किसी भी शक्तिशाली राज्य का नाश कर देता है और कर सकता है। उनके पाप भारी थे, वे धर्मी को सताते थे और घूस लेते थे, गरीब के लिए उनके पास न्याय नहीं था, अतः परमेश्वर ने कहा कि उनके सब चौकों में रोना और पीटना होगा और वे सड़कों में हाय हाय करेंगे। ये परमेश्वर का वचन है। आइए हम आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे आमोस नबी की पुस्तक 5:15। यहाँ पर लिखा हुआ है, बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो और फाटकों में न्याय को स्थिर करो, क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बचे हुओं पर अनुग्रह करे। कृपया ध्यान दीजिए, आज धनवान कुछ भी कर सकता है, सत्य का समर्थक गरीब सुनवाई का अवसर ही नहीं पाता है। परमेश्वर कहता है, बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो और फाटक में न्याय को स्थिर रखो। तब कहता है, क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बचे हुओं पर अनुग्रह करे। जी हाँ, आमोस के कहने का अर्थ है, संभावना बहुत कम है, परंतु आशा फिर भी बनी हुई है। अब आमोस आने वाले दंड की भी चर्चा करेगा, जिसमें वह कहता है यहोवा का दिन। आमोस नबी की पुस्तक 5:16-17 में हम पढ़ते हैं, इस कारण सेनाओं का परमेश्वर प्रभु यहोवा यूं कहता है, सब चौकों में रोना पीटना होगा और सब सड़कों में लोग हाय हाय करेंगे, वे विलाप करने में निपुण हैं, उन्हें रोने पीटने को बुलाएंगे और सब दाख की बारियों में रोना पीटना होगा, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, मैं तुम्हारे बीच में से होकर जाऊंगा, मैं तुम्हारे बीच में से होकर जाऊंगा। परमेश्वर देख रहा है कि वे मन नहीं फिराएंगे, अतः वह दंड की स्पष्ट भविष्यवाणी करता है कि सब मरेंगे और सब लोग विलाप करेंगे। यह कितनी कठोर बात है। आगे आमोस 5:18 में हम पढ़ते हैं, हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो, यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा, वह तो उजियाले का नहीं अंधियारे का दिन होगा। वे बड़े ही धर्मी अंदाज में कहते थे कि यहोवा का दिन आ जाए तो अच्छा होगा, परंतु आमोस कहता है वह हाय का दिन होगा। हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो, उनके लिए तो वह भावनात्मक अभिव्यक्ति मात्र ही था। वह दिन वैसा प्रसन्नता का दिन नहीं होगा जैसा वे सोच रहे थे। लिखा है यहोवा का दिन, यहोवा का दिन, योएल ने इसकी सबसे पहले चर्चा की थी और अन्य भविष्यद्वक्ता उस पर ध्यान आकर्षित करते रहे हैं। मनुष्य एक दिन को प्रभु राज का समय मानते हैं। मैं भी कभी ऐसा ही सोचता था। आमोस योएल के समान इस दिन को अंधकार का समय बताता है। इस दिन का आरंभ दंड से होगा और पृथ्वी पर प्रभु राज के समय तक चलेगा। मेरे प्रियो, बहुत से टीकाकारों का मानना है कि इसराइल के लोग यहोवा के दिन के बारे में व्यंग करके उनकी निंदा करते थे, परंतु मुझे यहाँ ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इसके विपरीत जो बात मेरी समझ में आती है वह यह है कि वे मूसा की व्यवस्था के पालन में अधिक ध्यान देने लगे थे, परंतु मूर्ति पूजा का त्याग नहीं कर रहे थे। व्यवस्था पालन उनके लिए एक धर्म मात्र था, जैसे आज भी अनेक विश्वासियों के लिए आराधना में जाना होता है। यही कारण है कि आराधना आज मृतक है, उसमें वास्तविकता नहीं थी, न ही उसमें मनोभाव थे। क्या आराधना अपनी सुंदरता, अपने कर्ण लुभावन शब्दों के साथ जीवन परिवर्तन लाती है? क्या आप बाजार में वैसा जीवन जी सकते हैं? लोग कहते हैं, प्रभु यीशु आता क्यों नहीं? क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं, आप सच में चाहते हैं कि वह आ जाए? क्या आप कलीसिया के उठाए जाने को अपनी कष्ट मुक्ति तो नहीं समझ रहे हैं? मेरे प्रियो, मेरा एक दोस्त सदैव कठिनाइयों में कहता था, काश प्रभु आ जाए, क्योंकि वह पढ़ाई में परिश्रम करना नहीं चाहता था। हमारे दीक्षांत समारोह के बाद उसे विवाह करना था। उस रात वह भोजन कक्ष से बाहर निकला और आकाश की ओर मुंह करके बोला, मुझे पूरी आशा है कि प्रभु कुछ दिन नहीं आएगा। मेरे प्रियो, बहुत से लोग प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा में हैं, क्योंकि वे कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं। उससे भेंट करना उनकी मनोकामना नहीं है। आमोस कहता है, तुम परमेश्वर से दूर हो, यद्यपि तुम धार्मिकताएं और धार्मिक संस्कारों को पूरा करते हो। तुम मूर्ति पूजा का त्याग करना नहीं चाहते। तुम्हें प्रभु के दिन की लालसा नहीं करना है, क्योंकि वह ज्योति नहीं अंधकार का समय होगा। उससे पहले महाक्लेश का संकट आएगा। मेरे प्रियो, आप सोचते हैं कि आप सीधे प्रभु राज में प्रवेश करेंगे, परंतु यह आपका भ्रम है। आज आपको भी अपने जीवन के उन गंदे विचारों को, जो मूर्ति पूजा के समान है, घूस लेने की बातों को अपने जीवन से हटाना है, दूर करना है, ताकि आप परमेश्वर के समक्ष खड़े हो सकें। जो यह सोचता है कि कलीसिया महाक्लेश में नहीं होगी, इस भ्रम में न रहें कि हम न्याय से बच पाएंगे। मेरे मित्रों, हम में से कुछ लोग स्वर्ग में जाकर सोचेंगे कि हम महाक्लेश में हैं। आप जानते हैं क्यों? दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसके 9 और 10 पद में पौलुस कहता है, इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम उसे भाते रहें, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। प्रभु का यह न्याय आसन श्वेत सिंहासन नहीं है। क्या यह न्याय उद्धार के लिए है? जी नहीं। पहला कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय उसके 11 पद में पौलुस कहता है, उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। जी हाँ, आप इस नींव पर निर्माण करते हैं, परंतु ध्यान देने की बात यह है कि यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि वह कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ है अर्थात स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। मेरे प्रियो, यही कारण है कि मैं कहता हूं कि अनेक उद्धार प्राप्त विश्वासी स्वर्ग पहुंचने पर धुएं की गंध से मरे हुए होंगे, क्योंकि उन्होंने इस पृथ्वी पर शारीरिक काम किए हैं जो व्यक्तिगत लाभ के थे। मेरा सूर्यास्त होने वाला है, इसलिए मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं मेरा भविष्य क्या होगा। आप सोचते हैं कि मेरे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के कारण मैं मजदूरी पाऊंगा। आप मुझसे बढ़कर नहीं जानते। यदि आप जानते होते तो आप मेरा वचन सुनना भी नहीं चाहते। इसी प्रकार मैं भी आपको आपसे बढ़कर के नहीं जानता हूं। मेरे प्रियो, हमारा सांसारिक जीवन परखा जाएगा, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। अतः प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा का दिखावा करना एक धर्मी मूर्खता है, क्योंकि मरणोपरांत या उठाए जाने के बाद भी आप महाक्लेश आग से नहीं बचेंगे। सुनिए दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5:11 में पौलुस कहता है, इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं, परंतु परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है। जी हाँ, यदि आप यह सोचते हैं कि स्वर्ग पहुंचने पर वह आपको सोने का तांगा देगा कि आपने सारा जीवन रविवार की आराधना में स्तुति की है, तो यह आपका भ्रम है। ऐसा तो होगा भी नहीं। आपका पारिवारिक जीवन, आपके काम के स्थान पर और आपके समाज में आपकी गवाही, विपरीत लिंग के साथ आपका व्यवहार आदि प्रभु यीशु के न्याय सिंहासन के समक्ष परखे जाएंगे। यही काम देह में रहते हुए आपने पृथ्वी पर किए थे और उसका परिणाम आपको मिलेगा। क्या अब आप स्वर्ग जाना चाहेंगे? क्या आपका लेखा साफ है? पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों की पत्री 11:31 में, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। इसी कारण मैं प्रभु के समक्ष अपने सब दोष स्वीकार करता हूं। यदि मैं ऐसा ना करूं तो वह स्वर्ग में लेखा लेगा। आपने क्रोध में आकर गवाही खराब की या आपने किसी विश्वासी की बुराई की, अब क्या आप सोचते हैं कि स्वर्ग में प्रभु आपको शाबाशी देगा? वह आपको इन बातों के लिए जांचेगा। स्वर्ग में लेखा साफ किया जाएगा। प्रभु के न्याय आसन का यही उद्देश्य है। मेरे मित्रों, आमोस उनसे यही कहता है, मूर्ख मत बनो कि तुम्हारे यहोवा के दिन की लालसा है। अंधकार का दिन होगा, ज्योति का नहीं। तुम महाक्लेश में जाओगे। जी हाँ, यदि आप विश्वासी हैं और महाक्लेश से बच जाते हैं तो आपको प्रभु यीशु के न्याय आसन के सामने खड़ा होना होगा। अतः जैसा आप सोचते हैं वैसा नहीं है। आमोस नबी के पुस्तक 5:19 में लिखा है, जैसा कोई सिंह से भागे और उसे भालू मिले, या घर में आकर भीत पर हाथ टेके और सांप उसको डसे। आमोस धर्मशास्त्र का एक अति सजीव भविष्यद्वक्ता है। उसकी भाषा बड़ी ही प्रतीकात्मक है। वह प्रकृति के उदाहरणों के साथ मुहावरों का भी उपयोग करता है। एक मनुष्य में है, वह कहता है, एक मनुष्य जंगल में है और शेर उसके पीछे है। वह शेर से बचकर भागता है तो रिक्ष अर्थात भालू उसके सामने आ जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आप क्लेश से बचने के लिए प्रभु के साथ चले जाएं, तो यह ऐसा है जैसा आसमान से गिरे और खजूर में लटके। अब यह मनुष्य भालू से बचकर भागता है और घर पहुंचता है। वह घर की दीवार पर सांस तो ले ही रहा है कि सांप आकर उसे डस लेता है। अच्छा होता कि शेर या भालू उसे फाड़ खाता, अपेक्षा इसके कि सांप का जहर उसके शरीर में पहुंचे। मेरे प्रियो, आमोस के कहने का अर्थ है कि हमें अपने इस जीवन में अत्यधिक सावधान रहना है। विश्वासी होने के कारण हमारा उद्धार तो संकट में नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे पापों का दंड चुका दिया है। परंतु यदि हम फिर भी पाप में जीवन व्यतीत करें तो प्रभु उनका लेखा लेगा। जी हाँ, वह पवित्र, धर्मी और न्यायी है, अतः उसे ऐसा करना ही होगा। अतः उचित होगा कि हम यही अपने आप को जांचें, इससे पहले कि हम उसके सम्मुख खड़े किए जाएं। अधिकांश विश्वासी इस बात को समझ नहीं पाते हैं, परंतु आज मुझे और आपको समझने की आवश्यकता है। आमोस नबी की पुस्तक 5 अध्याय उसके 20 पद में आगे लिखा है, क्या यह सच नहीं है कि यहोवा का दिन उजियाले का नहीं वरन अंधियारे ही का होगा, हाँ ऐसे घोर अंधकार का जिसमें कुछ भी चमक ना हो। यहोवा का दिन इसराइल पर आने वाले संकट से आरंभ होगा। यहोवा के दिन में इसराइल के दंड के अतिरिक्त और भी कुछ होगा। उस समय प्रभु यीशु पृथ्वी पर फिर आएगा और अपना 1000 वर्ष का राज्य स्थापित करेगा। मेरे प्रियो, क्या आज मैं और आप उस दिन के लिए तैयार हैं कि हम उसके राज्य में भागी हों? क्या आप उससे मिलने के लिए तैयार हैं, या आप सिर्फ यूं ही कह रहे हैं कि प्रभु आप शीघ्र आएं? मेरे प्रियो, आज हम सबको उसके सामने खड़े होने के लिए अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। संसार को आप न देखें, परंतु उस महान परमेश्वर की ओर देखें जो आपके जीवन का लेखा लेने के लिए तैयार बैठा है। क्या आज आप उसकी ओर फिरने के लिए तैयार हैं? मेरे प्रियो, आज आपको निर्णय लेना होगा। और इसी के साथ यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय भी समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
यीशु तेरा प्यार कितना सुंदर है, कितना मधुर है यीशु तेरा प्यार, यीशु तेरा प्यार, यीशु तेरा प्यार, यीशु तेरा प्यार।